ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया क्षेत्र में रहे नेपालियों की सुरक्षा है सरकार की उच्च प्राथमिकता में। नेपालियों की सुरक्षा के लिए परराष्ट्र मंत्रालय ने की इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित। मौत अवधि में आचार संहिता पालन संबंध में प्रभावकारी अनुगमन करने का अधिकारियों को आयोग ने किया निर्देश। परसों होने जा रहे प्रतिनिधि सभा चुनाव में फोटो अंकित प्रमाण पत्र के आधार पर मतदान किया जा सकता है, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। और ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इसराइल का हमला आज भी जारी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को उसने उच्च प्राथमिकता में रखा है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकसित घटनाक्रम और नेपाली नागरिकों की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए आज विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका महाशाखा के सहसचिव रामकाजी खड़का ने बताया कि विभिन्न देशों में कार्यरत तथा ट्रांजिट में फंसे नेपाली नागरिक सुरक्षित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि 10 विभिन्न राजनयिक मिशनों के माध्यम से नेपाली नागरिकों से संपर्क किया जा रहा है और अब तक उनकी स्थिति सामान्य और सुरक्षित है। सहसचिव खड़का ने बताया कि नेपाली नागरिकों की सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित कर आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। सचिव खड़का ने यह भी बताया कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान ट्रांजिट में फंसे नेपाली नागरिकों की संख्या लगभग 1000 से अधिक है। इसी प्रकार मंत्रालय ने तनावग्रस्त विभिन्न देशों में कार्यरत नेपाली नागरिकों का विवरण संकलन, सहयोग और उद्धार के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पोर्टल संचालन में लाया गया है। हाल की परिस्थितियों के कारण नेपाली नागरिकों की स्थिति संबंधी सूचना और विवरण संकलन, आवश्यक सहयोग एवं उद्धार के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। ये जानकारी कौंसुलर विभाग की महासचिव द्रुपदा सापकोटा ने दी। ऑनलाइन पोर्टल संचालन में आने के साथ ही संबंधित देशों के दूतावासों के माध्यम से यथाशीघ्र विवरण अद्यतन करने के लिए नेपाली नागरिकों से अनुरोध भी किया गया है। मंत्रालय ने पहले चरण में विभिन्न देशों से नेपाल लौटने के क्रम में हवाई अड्डों पर फंसे व्यक्तियों जिनका वीजा समाप्त हो चुका है या जिनका वीजा कंपनी द्वारा रद्द कर दिया गया है और टिकट कटने के बाद भी असहज परिस्थिति में फंसे नेपाली नागरिकों से पोर्टल के माध्यम से अपना व्यक्तिगत विवरण, संपर्क पता और वर्तमान स्थिति दर्ज करने का अनुरोध किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव की स्थिति में अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के पीछे न पड़ने और आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर संबंधित दूतावासों से संपर्क में रहने का आग्रह किया। मौके पर प्रवक्ता क्षेत्री ने बताया कि हवाई उड़ानों की स्थिति सामान्य होते ही यूएई में ईरानी हमले में मारे गए गोरखा के दिवस श्रेष्ठ का शव नेपाल लाया जाएगा। प्रतिनिधि सभा चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कुछ प्रमाण पत्र भी मान्य किए गए हैं। मतदाता परिचय पत्र के अलावा नागरिकता प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी लाल पुर्जा या ड्राइविंग लाइसेंस भी मतदान के लिए मान्य होगा। ये जानकारी आयोग ने दी है। आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई अंतिम मतदाता नामावली में नाम दर्ज हो चुके और फागुन 20 कते तक 18 की उम्र पूरा करने वाले नेपाली नागरिक निर्धारित मतदान केंद्र जाकर मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों को अपने सेवा समूह से संबंधित कानून में निर्धारित आचरण के अतिरिक्त निर्वाचन आचार संहिता 2082 में उल्लिखित प्रावधानों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा जारी निर्वाचन आचार संहिता 2082 में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर्मचारी किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। आचार संहिता में यह भी उल्लेख है कि चुनाव में संलग्न कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी अपने पद का दायित्व तथ्यपरक और निष्पक्ष ढंग से निभाएं। निर्वाचन अवधि के दौरान देश का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश भ्रमण पर जाने के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय तह के कर्मचारी अथवा सार्वजनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा और नहीं भेजा जा सकेगा। इसी प्रकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार, राजनीतिक दल के भ्रातृ संगठन या संबंधित व्यक्तियों को नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या सार्वजनिक संस्थान के भवन, अतिथि गृह, सभागार, वाहन या अन्य सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन अधिकारियों को अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने आज से मतदान के दिन मतदान केंद्र बंद होने तक पालन किए जाने वाले विशेष आचरण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देश दिया है। आगामी फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा चुनाव होने जा रहा है। निर्वाचन आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहायक प्रमुख जिला अधिकारी और कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय के प्रमुख को अलग अलग जिम्मेदारियों सहित निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आचार संहिता में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार आज से फागुन 21 गते तक आचार संहिता द्वारा निर्धारित सभी पक्षों को पालन करना अनिवार्य है। आयोग ने इन प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आचार संहिता 2082 की धारा 17 के अनुसार मतदान से पूर्व के 48 घंटे व मतदान के दिन मतदान केंद्र बंद होने तक विशेष आचरण का पालन करना आवश्यक है। आयोग ने इन प्रावधानों का स्मरण कराते हुए मतदान के दिन आचरण के पालन की निगरानी कर उसे प्रभावी बनाने के लिए अपने अपने जिले में सूक्ष्म अनुगमन करने का निर्देश दिया है। यदि निर्वाचन आचार संहिता तथा निर्वाचन कसूर तथा सजाए आयन 2073 के विपरीत कोई कार्य किया जाता है तो उसी कानून के अधीन रहते हुए जिला आचार संहिता अनुगमन समिति के समन्वय में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आयोग ने प्रचार प्रसार निषेध अवधि के दौरान प्रचलित कानून और निर्वाचन आचार संहिता द्वारा निषिद्ध कार्यों को न करने और न करवाने के लिए सभी से हार्दिक अनुरोध किया है। गुरुवार को होने वाले प्रतिनिधिसभा चुनाव के तहत मौन अवधि चालू है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार की अवधि कल सोमवार मध्यरात्रि से समाप्त हो गई है। निर्वाचन आयोग ने फागुन 4 गते से सोमवार रात 12 बजे तक प्रचार प्रसार का समय निर्धारित किया था। मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान सम्पन्न होने तक लागू रहने वाली मौन अवधि में प्रचार प्रसार, भाषण, सभा, बैठक, समीक्षा या निर्वाचन को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। आयोग के अनुसार इस अवधि में मत मांगना, पोस्ट करना या चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से घूमना फिरना भी निषिद्ध है। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने जानकारी दी है कि मौन अवधि के दौरान यदि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से आर्थिक लेनदेन करते हुए पाया गया तो केवल उम्मीदवार की उम्मीदवारी ही रद्द नहीं होगी बल्कि 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से भी वंचित किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। मौन अवधि का उद्देश्य मतदाताओं को स्वच्छ, स्वतंत्र और शांत वातावरण में विवेकपूर्ण ढंग से मतदान करने का अवसर प्रदान करना है। इस दौरान मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदाता पंक्तियों का प्रबंधन और शांति सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। विश्व के कई देशों में 24 से 72 घंटे तक मौन अवधि निर्धारित करने की परंपरा है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित व्यक्तियों को मौन अवधि में विशेष आचरण का पालन करना होगा। मौन अवधि शुरू होने से पहले मतदान केंद्र के 300 मीटर के दायरे में लगाए गए चुनाव चिन्ह और प्रचार सामग्री हटा ली जानी चाहिए। इस अवधि में SMS, फेसबुक, वाइबर जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मत मांगना या प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित है। साथ ही किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार करने वाली खबर या सूचना का प्रकाशन या प्रसारण भी नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधिसभा चुनाव में एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार किशोरी शाह कमल की उम्मीदवारी आयोग ने खारिज कर दी है। आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी ने बताया कि प्रतिनिधिसभा चुनाव आयन 2074 की धारा 13 के खंड ज के अनुसार शाह की उम्मीदवारी अयोग्य पाई गई। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग आयन 2073 की धारा 9 की उपधारा 5 के प्रावधान के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। मिथिला का महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा आज अंतिम दिन जनकपुर धाम में पंचकोशी अंतर्गृह परिक्रमा के साथ संपन्न हुई। जनकपुर धाम के हनुमानगढ़ी से फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर फागुन पूर्णिमा तक चलने वाली इस परिक्रमा में इस बार लाखों तीर्थयात्री शामिल हुए। मिथिला मध्यमा परिक्रमा में 14 दिन तक सहभागी रहने वालों के लिए अंतिम दिन अंतर्गृह परिक्रमा में भाग लेना अनिवार्य परंपरा है। परिक्रमा मार्ग में होलिका दहन के लिए जलाई गई अग्नि की राख उड़ाते हुए भक्तजन सुबह से ही अंतर्गृह परिक्रमा में शामिल हुए। परिक्रमा के तीर्थयात्री नेपाल के 107 किलोमीटर और भारत के 26 किलोमीटर सहित कुल 133 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव तय करते हैं। काठमांडू के नया मानेश्वर क्षेत्र में आज कचरा ढोने वाले टिपर की टक्कर से एक स्कूटर चालक की मौत हो गई। काठमांडू महानगर पालिका 31 मीन भवन स्थित सिविल अस्पताल के पास B2K3229 नंबर के कचरा ढोने वाले टिपर की टक्कर से सुनसरी के इनरवा स्थायी घर तथा हाल भक्तपुर निवासी 48 वर्षीय बद्री कोयराला की मृत्यु हो गई। ये जानकारी काठमांडू प्रहरी के प्रवक्ता SP पवन कुमार भट्टराय ने दी। गोरखा निवासी विकास थापा मगर द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश 3001B945 नंबर के टिपर ने स्कूटर प्रदेश नंबर 3001B945 को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर चालक कोयराला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। पुलिस ने टिपर चालक थापा मगर को हिरासत में ले लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का आज चौथा दिन हो गया है। ये युद्ध पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और घातक हो चुका है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी मिडिल ईस्ट में तनाव और संकट बढ़ा दिया है। ईरानी मिसाइलों का हमला मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावासों को निशाना बना रहा है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। लेबनान में बसा उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद इस युद्ध में कूद गया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल में कई धमाके किए, वहीं अब इसराइल ने हिजबुल्लाह के सपोर्ट बेस बेरूत के दहियाह में हमला किया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत के कई स्कूलों में क्लास रोक दी गई है, क्योंकि स्कूलों का इस्तेमाल बेघर हुए हजारों लोगों को पनाह देने के लिए किया जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बताया कि उसने आज सुबह बहरीन के शेख ईसा इलाके में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। IRGC के मुताबिक हमले में 20 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी गईं, जिससे बेस की मेन कमांड और हेडक्वार्टर बिल्डिंग तबाह हो गई और फ्यूल टैंक में आग लग गई। लेकिन बहरीन की तरफ से अभी तक इस हमले को लेकर कोई जवाब सामने नहीं आया है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने 7 देशों में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। वहीं ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले कर रहा है। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह के शामिल होने के बाद इसराइल ने इस संगठन के ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया क्षेत्र में रहे नेपालियों की सुरक्षा है सरकार की उच्च प्राथमिकता में। नेपालियों की सुरक्षा के लिए परराष्ट्र मंत्रालय ने की इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित। मौन अवधि में आचार संहिता पालन संबंध में प्रभावकारी अनुगमन करने का अधिकारियों को आयोग ने किया निर्देश। परसों होने जा रहे प्रतिनिधिसभा चुनाव में फोटो अंकित प्रमाण पत्र के आधार पर मतदान किया जा सकता है, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। और ईरान के विरूद्व अमेरिका और इसराइल का हमला आज भी जारी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।